उसने रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था और यकदम उसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से उसके साथ कुछ खाए पिए बगैर ही फिर रही हैं। उसे निदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए उसने रास्ते में एक जगह रुककर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया। वो जिंदगी में पहली बार किसी बूढ़े शख्स के साथ इतना वक्त गुजार रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि ये काम आसान नहीं था। फ्लैट में पहुंचकर वो भी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। उसने सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ करवाया और फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में ही वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्लुफी के साथ ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सालार को रश्क आने लगा। उसने फुरकान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी नहीं देखा था। उसके गुफ्तगू के अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था कि दूसरा अपना दिल उसके सामने खोल कर रख देने पर मजबूर हो जाता। इतने सालों से दोस्ती के बावजूद फुरकान की तरह गुफ्तगू करना नहीं सीख सका था। 10 मिनट बाद वो वहां खामोशी से खाना खाने वाले एक सामे की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जबकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ थे। सईदा अम्मा ये जानकर कि फुरकान डॉक्टर है, उसे तिब्बी मशवरे लेने में मसरूफ थी। खाने के खात्मे तक वो फुरकान को मजबूर कर चुकी थी कि वो अपना मेडिकल बॉक्स लाकर उनका चेकअप करे। फुरकान ने उन्हें यह नहीं बताया था कि वो इनकोलॉजिस्ट है। वो बड़ी तहमुल मिजाजी से अपना बैग ले आया। उसने सईदा अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर स्टेटोस्कोप से उनके दिल की रफ्तार को मापा और आखिर में नब्ज चेक करने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि वो बेहद तंदुरुस्त हालत में है और ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी नहीं उन्हें। सईदा अम्मा एकदम बेहद हशाश बशाश नजर आने लगी। सालार उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हुए किचन में बर्तन धोता रहा। वो दोनों लाउंज के सोफों पर बैठे हुए थे। फिर इसी दौरान उसने फोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर सिप्त अली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, सालार ने पुलिस स्टेशन पर किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इत्तला दी थी। फुरकान हैरान हुआ, जी वो यही है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सिप्त अली ने बेख्तियार कहा। हाँ वो मेरी अजीजा हैं, हम उन्हें तलाश कर रहे थे चंद घंटों से। पुलिस से राबता किया तो सालार का नाम और नंबर दे दिया उन्होंने। फुरकान ने उन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया और फिर सईदा अम्मा की बात फोन पर उनसे कराई। सालार भी बाहर लाउंज में आ गया। सईदा अम्मा फोन पर गुफ्तगू में मसरूफ थी। डॉक्टर साहब के अजीजा हैं ये, फुरकान ने धीमी आवाज में उसके करीब आकर कहा। डॉक्टर सिप्त अली साहब की? सालार हैरान हुआ। हाँ उन्हीं की, सालार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। भाई साहब कह रहे हैं तुमसे बात कराने को, सईदा अम्मा ने फुरकान से कहा। फुरकान तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और रिसीवर लेकर कागज पर कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सिप्त अली उसे एड्रेस लिखवा रहे थे। सईदा अम्मा ने कदर हैरानी से लाउंज के दरवाजे पर खड़े सालार को देखा। तुम क्या कर रहे हो? उनकी नजरें सालार के एप्रन पर जमी हुई थी। कुछ शर्मिंदा हुआ, मैं बर्तन धो रहा था। सालार वापस किचन में आया, उसने एप्रन उतार दिया। वैसे भी बर्तन वो तकरीबन धो चुका था। सालार आओ फिर इन्हें छोड़कर आते हैं, उसे अपने अकब में फुरकान की आवाज आई। ये काम बाद में कर लेना, तुम गाड़ी की चाबी लो, मैं हाथ धोकर आता हूं, सालार ने कहा। अगले 10 मिनट में वो नीचे सालार की गाड़ी में थे। फुरकान अगली सीट पर था और उसके बावजूद पिछली सीट पर बैठी सईदा अम्मा से गुफ्तगू में मसरूफ था। साथ साथ वो सालार को रास्ते के बारे में हिदायत भी देता जा रहा था। बहुत तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए वो 20 मिनट में मतलूबा मोहल्ले और गली में थे। बड़ी गली में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो दोनों उन्हें अंदर गली में उनके घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की जरूरत नहीं थी, वो अपनी गली को पहचानती थी। वो फखरी अंदाज में जताते हुए सालार को बताती गई, हलवाई की दुकान, गटर के सीमेंट वाले ढक्कन, परवेज साहब का घर। जी, सालार मुस्कुराते हुए सर हिलाता रहा। उसने उनको ये नहीं बताया कि उनकी बताई हुई सारी निशानियां सही थी, सिर्फ वो उसे एक गलत इलाके में ले गई थी। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। उन्होंने सुर्ख ईंट की बनी हुई एक हवेली नुमा 2 मंजिला मकान के सामने रुकते हुए 275 दफा कहा। फुरकान ने आगे बढ़कर बैल बजाई। सालार कदर सताइशी अंदाज में हवेली पर नजरें दौड़ाता रहा। वो यकीनन काफी पुरानी हवेली थी, मगर मुसलसल देखभाल की वजह से वो उस गली में सबसे बावकार लग रही थी। तुम लोगों को अब मैंने चाय पिए बगैर नहीं जाने देना, सईदा अम्मा ने कहा। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई, खास तौर पर सालार को। बच्चा मुझे सारा दिन लिए फिरता रहा। सईद अम्मा ने सालार के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं सईद अम्मा, चाय हम फिर कभी पियेंगे, आज हमें देर हो रही है। हाँ सईद अम्मा, आज चाय नहीं पियेंगे, कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे। फुरकान ने भी जल्दी से कहा, देख लेना ऐसा ना हो कि याद ही ना रहे तुम्हें। ले भला खाना कैसे भूलेंगे हम। वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी वही बनाकर खिलाइएगा, फुरकान ने कहा। अंदर से कदमों की आवाज आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाजा खोलने आ रही थी और उसने दरवाजे से कुछ फासले पर ही सईदा अम्मा और फुरकान की आवाजें सुन ली थी, इसलिए उसने कुछ भी पूछे बगैर दरवाजे का बोल्ट अंदर से उतारते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा सईदा अम्मा, खुदा हाफिज। फुरकान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख कर कहा। सालार इससे पहले ही पलट चुका था। गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए सालार ने फुरकान से कहा, तुम्हारी सबसे नापसंदीदा डिश पालक गोश्त है, और तुम उनसे क्या कह रहे थे। फुरकान ने कह लगाया, कहने में क्या हर्ज है, वैसे हो सकता है वो वाकई इतना अच्छा पकाए कि मैं खाने पर मजबूर हो जाऊं। तुम जाओगे उनके घर। सालार गाड़ी मेन रोड पर लाते हुए हैरान हुआ। बिल्कुल जाऊंगा, वादा किया है मैंने और तुमने। मैं तो नहीं जाऊंगा, सालार ने इनकार किया। जान न पहचान मुंह उठाकर उनके घर खाना खाने पहुंचा। डॉक्टर सिप्त अली साहब के फर्स्ट कजन है और मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी जान पहचान है उनके साथ, फुरकान ने कहा। वो और मामला था, उन्हें मदद की जरूरत थी, मैंने कर दी और बस इतना काफी है। उनके बेटे यहां होते तो और बात थी, लेकिन इस तरह अकेली औरतों के घरों में तो कभी नहीं जाऊंगा। सालार संजीदा था। मैं कौन सा अकेला जाने वाला हूं यार, बीवी बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। जानता हूं मेरा अकेला उनके यहां जाना मुनासिब नहीं है, नौशीन भी उनसे मिलकर खुश होगी। हां भाभी के साथ चले जाना, कोई हर्ज नहीं है, सालार मुतमईन हुआ। मैं जाऊं, तुमको भी साथ चलना है, उन्होंने तुम्हें भी दावत दी है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम हो आना काफी है, सालार ने लापरवाही से कहा। तुम उनके खास मेहमान हो, तुम्हारे बगैर तो सब कुछ फीका रहेगा। सालार को उसका लहजा कुछ अजीब सा लगा। उसने गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब, मेरा ख्याल उन्हें तुम दामाद के तौर पर पसंद आ गए हो। फजूल बातें मत करो, सालार ने उसे नाराजगी से देखा। अच्छा देख लेना, प्रपोजल आएगा तुम्हारा उसके घर से। सईदा अम्मा को तुम हर तरह से अच्छे लगे हो, हर बात पूछी उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में, ये भी कि तुम्हारा शादी का कोई इरादा है कि नहीं, और है तो कब तक करने का इरादा है। मैंने कहा जैसे ही कोई अच्छा प्रपोजल मिला वो फौरन कर लेगा। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताने लगी। अब जितनी तारीफें वो अपनी बेटी की कर रही थी, अगर हम उसमें से 50% भी सच समझ लें तो भी वो लड़की, क्या नाम ले रही थी, हाँ आमना, तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डॉक्टर सिप्त अली साहब के रिश्तेदार हैं वो, और तुम उनके बारे में फजूल बातें कर रहे हो, सालार ने उसे झटका। फुरकान संजीदा हो गया। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए तो एजाज की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी शादी डॉक्टर सिप्त अली साहब के खानदान में हो रही है। जस्ट शट अप फुरकान, ये मसला काफी डिस्कस हो गया, अब खत्म करो, सालार ने सख्ती से कहा। चलो ठीक है, खत्म करते हैं, फिर कभी बात करेंगे, फुरकान ने इत्मीनान से कहा। सालार ने गर्दन मोड़कर चुपती हुई नजरों से उसे देखा। ड्राइविंग कर रहे हो, सड़क पर ध्यान रखो, फुरकान ने उसके कंधों को थपथपाया। सालार कुछ नाराजगी के आलम में सड़क की तरफ मुतवज्जो हो गया। सईद अम्मा के साथ उनका राबता वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो एक शाम डॉक्टर सिप्त अली के यहां थे, जब उन्होंने अपने लेक्चर के बाद उन दोनों को रोक लिया। सईदा आपा, आप लोगों से मिलना चाहती हैं, मुझसे कह रही थी कि मैं आप लोगों के यहाँ उन्हें ले जाऊं। मैंने उनको बताया कि शाम को वो लोग मेरी तरफ आएंगे, आप यहीं मिल लें, आप लोगों ने शायद कोई वादा किया था उनके यहाँ जाने का मगर गए नहीं। फुरकान ने माने खेज नज़रों से सालार को देखा, वो नज़रें छुरा गया। नहीं हम लोग सोच रहे थे मगर कुछ मसरूफियत थी इसलिए नहीं जा पाए, फुरकान ने जवाबन कहा। वो दोनों डॉक्टर सिप्त अली के साथ उनके ड्राइंग रूम में चले आए, जहां कुछ देर बाद सईदा अम्मा भी आ गई, और आते ही उनकी शिकायत और नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया। फुरकान उन्हें मुतमईन करने में मसरूफ रहा जबकि सालार खामोशी से बैठा रहा। अगले वीकेंड पर फुरकान ने सालार को सईदा अम्मा की तरफ जाने के प्रोग्राम के बारे में बताया। सालार को इस्लामाबाद और फिर वहां से गांव जाना था, इसलिए उसने अपनी मसरूफियत बताकर सईद अम्मा से माजत कर ली। वीकेंड गुजारने के बाद लाहौर वापसी पर फुरकान ने उसे सईद अम्मा के यहां गुजारे जाने वाले वक्त के बारे में बताया। वो अपनी फैमिली के साथ वहां गया था। सालार, मैं सईद अम्मा की बेटी से ही मिला था, फुरकान ने बात करते हुए अचानक कहा। बहुत अच्छी लड़की है, सईद अम्मा के बरक्स खासी खामोश तबा लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की बड़ी अच्छी गुजरेगी, नौशीन को भी बहुत अच्छी लगेगी। फुरकान, तुम सिर्फ दावत की हद तक रहो तो बेहतर है, सालार ने उसे टोका। मैं बहुत सीरियस हूं, फुरकान ने कहा। मैं भी सीरियस हूं, सालार ने उसी अंदाज में कहा। तुम्हें पता है फुरकान, तुम जितना शादी पर इसरार करते हो मेरा शादी से उतना ही दिल उठ जाता है, और ये सब तुम्हारी इन बातों की वजह से है। सालार ने सोफे की पुश से टेक लगाते हुए कहा। मेरी बातों की वजह से नहीं, तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहते। फुरकान एकदम संचिता हो गया। ओके, साफ साफ कह देता हूं, मैं इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहता। फिर सालार ने सर्द महरी से कहा। ये एक बचकाना सोच है, फुरकान उसे बगौर देखते हुए बोला। ओके फाइन, बचकाना सोच है। फिर सालार ने कंधे झटकाते हुए कहा। देन यू शुड गेट राइट ऑफ इट, तब तुम्हें इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए, फुरकान ने नरमी से कहा। आई डोंट वॉन्ट टू गेट राइट ऑफ इट, सो मैं उससे छुटकारा नहीं चाहता। फिर सालार ने तुर्की बतुर्की कहा। फुरकान कुछ देर के लिए लाजवाब होकर उसे देखता रहा। मेरे सामने दोबारा तुम सईदा अम्मा की बेटी की बात मत करना, और अगर वो तुमसे इस बारे में बात करें भी तो तुम साफ साफ कह देना कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादीशुदा हूं। ओके, नहीं करूंगा इस बारे में तुमसे बात, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, फुरकान ने दोनों हाथ उठाते हुए सुलाजोई से कहा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए तुम्हें बुलवाया है, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए सालार को बैठने का इशारा किया। वो तैयबा के साथ उस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे, और सालार उनके फोन करने पर इस वीकेंड इस्लामाबाद आया हुआ था। सिकंदर उस्मान ने कतरे सताईशी नजरों से अपने तीसरे बेटे को देखा। वो कुछ देर पहले उनके साथ खाना खाने के बाद अब कपड़े तब्दील करके उनके पास आया था। सफेद शलवार कमीज और घर में पहनी जाने वाली सियाह चप्पल में वो अपने आम से हुलिये के बावजूद बहुत बावकार लग रहा था। शायद ये उसके चेहरे की संजीदगी थी, या फिर शायद वो आज पहली बार कई सालों के बाद उसे बड़े गौर से देख रहे थे और एतराफ कर रहे थे कि उसकी शख्सियत में बहुत वकार और ठहराव आ गया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सालार की वजह से उन्हें अपने सोशल सर्किल में इतनी अहमियत और इज्जत मिलेगी। वो जानते थे बहुत जगहों पर अब उनका तारुफ सालार सिकंदर के हवाले से होता था, और उन्हें इस पर खुशगवार हैरत होती थी। उसने अपनी पूरी टीन एज में उन्हें बुरी तरह ख्वार और परेशान किया था, और एक वक्त था जब उन्हें अपने इस बेटे का मुस्तकबिल सबसे तारीख लगता था। अपनी तमाम उम्र गैर मामूली सलाहियतों और काबिलियत के बावजूद मगर उनके अंदाजे और खदशात सही साबित नहीं हुए थे। तैयबा ने खुश्क मेवे की प्लेट सालार की तरफ बढ़ाई। सालार ने चंद काजू उठा लिए। मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूं, काजू मुंह में डालते हुए एकदम रुक गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सिकंदर उस्मान और तैयबा बहुत खुशगवार मूड में थे। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए सालार, सिकंदर ने कहा। सालार ने गैर महसूस अंदाज में हाथ में पकड़े हुए काजू दोबारा खुश्क मेवे की प्लेट में रख दिए। मैं और तैयबा तो हैरान हो रहे थे कि इतने रिश्ते तो तुम्हारे भाइयों में से किसी के नहीं आए जितने तुम्हारे लिए आ रहे हैं, सिकंदर ने बड़े शुगुफ्ता अंदाज में कहा। मैंने सोचा कुछ बात बात करें तुमसे, वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। जाहिद हमदानी साहब को जानते हो, उस्मान सिकंदर ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड का नाम लिया। जी, उनकी बेटी मेरी कुलीग है, रिमशा नाम है शायद। जी, कैसी लड़की है वो? सिकंदर उस्मान के चेहरे को गौर से देखने लगा। उनका सवाल बहुत वाजे था। अच्छी है, उसने चंद लम्हों बाद कहा। तुम्हें पसंद है? किस लिहाज से? मैं रिमशा के प्रपोजल की बात कर रहा हूं, सिकंदर उस्मान ने संजीदा होते हुए कहा। जाहिद पिछले कई हफ्ते से मुसलसल इस बात के सिलसिले में मुझसे बात कर रहा है। अपनी वाइफ के साथ एक दो बार हमारी तरफ भी आया है, हम लोग भी उनकी तरफ गए हैं। पिछले वीकेंड पर रिमशा से भी मिले हैं। मुझे और तैयबा को तो बहुत अच्छी लगी है, बहुत वेल बिहेव्ड है, और तुम्हारे साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती है। उन लोगों की ख्वाहिश है, बल्कि इसरार है कि तुम्हारे जरिए दोनों फैमिलीज में कोई रिश्तेदारी बन जाए। पापा, मेरी रिमशा के साथ कोई दोस्ती नहीं है, सालार ने मध्यम और ठहरे हुए अंदाज में कहा। वो मेरी कुलीग है, जान पहचान है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो? सिकंदर ने उससे पूछा। वो खामोश रहा। सिकंदर और तैयबा के दरमियान नजरों का तबादला हुआ। अगर तुम्हारी कहीं और दिलचस्पी है तो हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हमें खुशी होगी वहां तुम्हारी शादी की बात करते हुए। यकीनन हम भी तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे इस सिलसिले में, सिकंदर ने नरमी से कहा। मैं बहुत अरसा पहले शादी कर चुका हूं। एक लंबी खामोशी के बाद उसने सर झुकाए हुए मध्यम लहजे में कहा। सिकंदर को कोई दुश्वारी नहीं हुई ये समझने में कि उसका इशारा किस तरफ था। उनके चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई। इमामा की बात कर रहे हो? वो खामोश रहा। सिकंदर बहुत देर तक बेयकीनी से उसे देखते रहे। इतने अरसे से इसलिए शादी नहीं कर रहे? सिकंदर को जैसे शॉक लगा था। उनका ख्याल था वो उसे भुला चुका था। आखिर ये 8 साल पुरानी बात थी। अब तक तो वो शादी कर चुकी होगी, अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही होगी। तुम्हारी उसके साथ तो शादी कब की खत्म हो चुकी? सिकंदर ने उससे कहा। नहीं पापा, उसके साथ मेरी शादी खत्म नहीं हुई, उसने पहली बार सर उठाकर कहा। तुमने उसे निकाह नामे में तलाक का इख्तियार दिया था, और मुझे याद है कि तुम उसे ढूंढना चाहते थे ताकि तलाक दे सको। सिकंदर ने जैसे उसे याद कराया। मैंने उसे ढूंढा था, मगर वो मुझे नहीं मिली, और वो ये बात नहीं जानती कि उसके पास तलाक का इख्तियार है। वो जहां भी होगी अभी तक मेरी बीवी ही होगी। सालार, 8 साल गुजर चुके हैं, 1-2 साल की बात नहीं है। हो सकता है वो जान गई हो कि तलाक का इख्तियार उसके पास है। ये मुमकिन नहीं है कि वो अब भी तुम्हारी बीवी हो, सिकंदर ने कदर मुस्तरब होकर कहा। मेरे अलावा तो कोई दूसरा उसे ये नहीं बता सकता था, और मैंने उसे इस हक के बारे में नहीं बताया। और जब तक वो मेरे निकाह में है मुझे कहीं और शादी नहीं करनी। तुम्हारा कॉन्टैक्ट है उसके साथ? सिकंदर ने बहुत मध्यम आवाज में कहा। नहीं, 8 साल से उससे तुम्हारा राबता नहीं हुआ। अगर सारी उम्र ना हुआ तब तुम क्या करोगे? वो खामोश रहा। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सिकंदर उस्मान कुछ देर उसके जवाब का इंतजार करते रहे। तुमने मुझसे कभी यह नहीं कहा कि तुम उस लड़की के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो। तुमने तो मुझे यही बताया था कि तुमने सिर्फ वक्ती तौर पर उसकी मदद की थी, वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी, वगैरह वगैरह। सालार इस बार भी खामोश रहा। सिकंदर उस्मान चुपचाप उसे देखते रहे। वो अपने तीसरे बेटे को कभी नहीं जान सके थे। उसके दिल में क्या था वो उस तक कभी नहीं पहुंच सकते थे, जिस लड़की के लिए वो 8 साल जाया कर चुका था और बाकी की जिंदगी जाया करने के लिए तैयार था। उसके साथ उसके जज्बाती ताल्लुक की शिद्दत कैसी हो सकती थी, ये अब शायद उसे लफ्जों में बयान करने की जरूरत नहीं थी। कमरे में खामोशी का एक लंबा वक्फा आया। फिर सिकंदर उस्मान उठकर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। उनकी वापसी चंद मिनटों बाद हुई। सोफे पर बैठने के बाद उन्होंने सालार की तरफ एक लिफाफा बढ़ा दिया। उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए वो लिफाफा पकड़ लिया। इमामा ने मुझसे राब्ता किया था, वो सांस नहीं ले सका। सिकंदर उस्मान एक बार फिर सोफे पर बैठ चुके थे। ये 5-6 साल पहले की बात है, वो तुमसे बात करना चाहती थी। फोन नासरा ने उठाया था और उसने इमामा की आवाज पहचान ली थी। तब तुम पाकिस्तान में थे। नासरा ने तुम्हारे बजाय मुझसे उसकी बात कराई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे उसकी बात कराऊं। मैंने उससे कहा कि तुम मर चुके हो। मैं नहीं चाहता था कि वो तुमसे राबता करे, और जिस मुसीबत से हम छुटकारा पा चुके हैं उसमें दोबारा पड़े। मुझे यकीन था कि वो मेरी बात पर यकीन कर लेगी, क्योंकि तुम कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुके थे। वो वसीम की बहन थी, तुम्हारे बारे में ये सब जानती होगी। कम अज कम एक ऐसी कोशिश की तो वो खुद गवाह थी। मैं उसे निकाह नामे में मौजूद तलाक के इख्तियार के बारे में नहीं बता सका, ना ही उस तलाक नामे के बारे में जो मैंने तुम्हारी तरफ से तैयार कराया था। तुम्हें जब मैंने अमेरिका भिजवाया था तो तुमसे एक सादा कागज पर साइन लिए थे। मैं चाहता था कि मुझे जरूरत पड़े तो मैं खुद ही तलाक नामा तैयार करा लूं। ये कानूनी ये जायज था कि नहीं इसका पता नहीं, मगर मैंने इसे तैयार करा लिया था, اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کرایا مگر وہ کسی پی سی او کا تھا۔ کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھیجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا، شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوف زدہ تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاقت میں ہوں گے اور میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو دیکھ سکے، وہ دیکھ چکے تھے مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر سکندر انکل، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، میں وہ آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امام ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سالار، وہ رک گیا۔ سکندر نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم، اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ میں سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔ سالار نے سر نہیں اٹھایا، ان سے نظر نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جنبش تھی۔ اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سکندر چاہتے تھے وہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپ کپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بار بار انہیں بھیج کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طیبہ نے ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا، وہ سمجھ جائے گا۔ وہ سکندر کے چہرے سے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے سالار سے پوچھے بغیر، اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مجھے، وہ بات ادھوری چھوڑ کر تاسف آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھیچے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ وہی تھا، وہی تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا۔ گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، الویژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں سے رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امام ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، मगर वो जानता था कि उसने उसका कौन सा कर्ज लौटाया था, मोबाइल फोन की कीमत और उसके बिल्स। वो खाली उस जहनी के आलम में अपने बेड पर बैठे नीम तारीख कमरों की खिड़कियों से बाहर उसके घर की इमारत को तकता रहा। सारी दुनिया एकदम जैसे हर जिंदा शय से खाली हो गई थी। उसने खत पर तारीख पढ़ी। वो मामा के घर से जाने के तकरीबन 2.5 साल बाद भेजा गया था। 2.5 साल बाद अगर वो 20,000 रुपये उसे भिजवा रही थी तो इसका मतलब था वो खैरियत से थी। कम अज कम उसके इमामा के बारे में बदतरीन अंदेशे दूर साबित नहीं हुए थे। उसे खुशी थी, लेकिन अगर उसने ये समझ लेता कि सालार मर चुका था तो फिर उसकी ज़िंदगी से भी निकल गया था, और उसका क्या मतलब था वो ये भी जानता था। कई घंटे वो इसी तरह वहीं बैठा रहा। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आया, अपना बैग पैक करके वो घर से निकल आया। और अब वो सड़क पर था, उसी धुंध में, उसी मौसम में, सब कुछ जैसे धुआं बन रहा था या फिर धुंध। चंद घंटों बाद वो उसी होटल नुमा सर्विस स्टेशन के पास पहुंचा। उसने गाड़ी रोक ली। धुंध में मलफूफ वो इमारत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। गाड़ी को मोड़कर और सड़क से उतार कर अंदर ले आया, फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। 8 साल पहले की तरह आज भी वहाँ खामोशी का राज था, सिर्फ लाइट्स की तादाद पहले से ज़्यादा थी। उसने हॉर्न नहीं दिया, इसलिए अंदर से कोई नहीं निकला। बरामदे में अब वो पानी का ड्रम नहीं था। बरामदे से गुजरते हुए अंदर जाने लगा, तभी अंदर से एक शख्स निकल आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सालार ने उससे कहा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। उसने जमा ही ली और वापस मुड़ गया। आ जाए, सालार अंदर चला गया। ये वही कमरा था, मगर अंदर से कुछ बदल चुका था। पहले की नस्बत मेज़ों और कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी। कमरे की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। चाय लेंगे या उसके साथ कुछ और भी, उस आदमी ने मुड़कर अचानक पूछा। सिर्फ चाय, सालार एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। आदमी काउंटर के अकब में अब स्टोव जलाने में मसरूफ हो चुका था। आप कहाँ से आए हैं, उसने चाय के लिए केतली ऊपर रखते हुए सालार से पूछा। जवाब नहीं आया। वो शख्स ने गर्दन मोड़ कर देखा। चाय पीने के लिए आने वाला वो शख्स कमरे के एक कोने में नजरें जमाए हुए था, बिल्कुल पत्थर के किसी मुजस्मे की तरह बेहिस व बेहरकत। वो नमाज पढ़कर उसके बिलमुकाबिल मेज के दूसरी जानब कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ कहे बगैर उसने मेज पर पड़ा चाय का कप उठाया और उसे पीने लगा। लड़का तब तक बर्गर ले आया था और अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सालार तीखी नजरों के साथ बर्गर की प्लेट को देख रहा था जो उसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सालार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और तनकीदी नजरों से फिलिंग का जायजा लिया। फिर छुरी उठाकर उसने लड़के से कहा, जो अब इमामा के बर्गर की प्लेट उसके सामने रख चुका था, ये शामी कबाब है। वो फिलिंग के ऊपर वाली तह को अलग कर रहा था। ये आमलेट है, उसने नीचे मौजूद आमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा सा ऊंचा किया। और ये कैचअप, तो चिकन कहाँ है, मैंने तुम्हें चिकन बर्गर लाने को कहा था ना, उसने उखड़े लहजे में कहा। इमामा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है, लड़के ने कदरे गड़बड़ा कर कहा। कैसे चिकन बर्गर है, इसमें कहीं चिकन नहीं है, सालार ने चीख कर कहा। हम इसे ही चिकन बर्गर कहते हैं, वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है उसमें क्या डालते हो, उसमें बस शामी कबाब होता है, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है, चूंकि अंडे से मुर्गी निकलती है और मुर्गी के गोश्त को चिकन कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चिकन बर्गर बनता है, सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो लड़का खिस्याने अंदाज में हंसा। इमामा इन दोनों की गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ थी। ठीक है जाओ, सालार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया और वहां से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रखकर सालार ने बाएं हाथ से बर्गर को उठाया। बर्गर खाते हुए इमामा ने पहली बार प्लेट से सालार के होंठों तक बाएं हाथ में बर्गर के सफर को ताज्जुब आमेज नजरों से देखा, और ये ताज्जुब एक लम्हे में गायब हो गया था। वह एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ थी। सालार ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हे के लिए मुंह चलाया और फिर बर्गर को अपनी प्लेट में उछाल दिया। फजूल है बर्गर, तुम किस तरह खा रही हो, सालार ने लुकमे को बमुश्किल हलक से निकलते हुए कहा। इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, इमामा ने बेतासुर अंदाज में कहा। हर चीज़ में तुम्हारे स्टैंडर्ड बड़ा लो है इमामा, वो चाहे बर्गर हो या शौहर। बर्गर खाते हुए इमामा का हाथ रुक गया। सालार ने उसके सफ़ेद चेहरे को एक पल में सुर्ख होते देखा। सालार के चेहरे पर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट आई। मैं जलालुन नसर की बात कर रहा हूँ, उसने जैसे इमामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, इमामा ने पुरसकून लहजे में कहा। मेरा स्टैंडर्ड बाकी बहुत लो है। वो एक बार फिर बर्गर खाने लगी। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह पर दे मारोगे, सालार ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रिस्क जैसी नेमत को क्यों जाया करूंगी। ये इतना बुरा बर्गर नेमत है, उसने तजीक आमेज अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नेमतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास। इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर सकता। ये मेरी जबान पर जायका चखने की जो हिस है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो उसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं, और उन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सालार सिकंदर का नाम होगा, है ना। उसने इमामा की बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज़ आवाज़ में उसकी बात काटी। सालार सिकंदर कम अज़ कम इस तरह की चीज़ें खाकर एंजॉय नहीं कर सकता। उस शख्स ने चाय का कप उसके सामने रख दिया। सालार एकदम चौंक गया। सामने वाली कुर्सी अब खाली थी। साथ में कुछ और चाहिए, आदमी ने खड़े हुए अंदाज में पूछा। नहीं बस, चाय काफ़ी है, सालार ने चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आप इस्लामाबाद से आए हैं, उसने पूछा। हाँ। लाहौर जा रहे हैं, उसने एक और सवाल किया। इस बार सालार ने सर के इशारे से जवाब दिया। वो अब चाय का घूंट ले रहा था। उस आदमी को शुबा हुआ उसने चाय पीने वाले शख्स की आंखों में हल्की सी नमी देखी है। मैं कुछ देर यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ, उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए सर उठाए बगैर कहा। वो शख्स कुछ ताज्जुब से उसे देखता हुआ वापस किचन में चला गया, और सानवी नौयत के कामों में मसरूफ गाहे बगाहे दूर से सालार पर नजरें दौड़ाता रहा। पूरे 15 मिनट बाद उसने सालार को टेबल छोड़कर कमरे से निकलते देखा। वो आदमी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ किचन में कमरे से वापस आया, मगर इससे पहले कि वो सालार के पीछे बाहर जाता, मेज पर खाली कप के नीचे पड़े एक नोट ने उसे रोक लिया। वो भौंचका सा उस नोट को देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर उस नोट को पकड़ा और तेजी से कमरे से बाहर आ गया। सालार की गाड़ी इस वक्त रिवर्स होते हुए मेन रोड पर जा रही थी। उस आदमी ने हैरानी से उसकी दूर जाती हुई गाड़ी को देखा, फिर हाथ में पकड़े उस 1000 के नोट को बरामदे में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा। नोट असली है, मगर आदमी बेवकूफ। उसने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए जेरे लब तबसरा किया और नोट को जेब में डाल लिया। सिकंदर उस्मान सुबह नाश्ते की मेज पर आए तो भी उनके जहन में सबसे पहले सालार ही का ख्याल आया था। सालार कहाँ है, उसे बुलाओ, उसने मुलाजिम से कहा। सालार साहब तो रात ही को चले गए थे। सिकंदर और तैयबा ने बेइख्तियार एक दूसरे का चेहरा देखा। कहाँ चले गए, गांव? नहीं, वापस लाहौर चले गए। उन्होंने सालार का नंबर डायल किया, मोबाइल ऑफ था। उन्होंने उसके फ्लैट का नंबर डायल किया, वहाँ जवाबी मशीन लगी हुई थी। उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड कराए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ परेशान से वो दोबारा नाश्ते की मेज़ पर आ बैठे। फ़ोन पर कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, तैयबा ने पूछा। नहीं, मोबाइल ऑफ है, उसके फ्लैट पर आंसर फ़ोन लगा हुआ है, पता नहीं क्यों चला गया। आप परेशान ना हो, नाश्ता करें, तैयबा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। तुम करो, मेरा मूड नहीं है, वो उठकर बाहर निकल गए। तैयबा बेख्तियार सांस लेकर रह गई। सालार ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, बाहर फुरकान था। वो पलट कर अंदर आ गया। तुम कब आए, फुरकान ने कदर हैरानी से उसके पीछे अंदर आते हुए कहा। आज सुबह, सालार ने सोफे की तरफ जाते हुए कहा। क्यों, तुम्हें गांव जाना था, फुरकान ने उसकी पुश्त को देखते हुए कहा। मैं तो पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी देखकर आ गया, बंदा आता है तो बता ही देता है, सालार जवाब में कुछ कहे बगैर सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ, फुरकान ने पहली बार उसके चेहरे को देखा और तश्वीश में मुब्तला हुआ। क्या हुआ, सालार ने जवाबन कहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या हुआ है, फुरकान ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, घर में सब खैरियत है? हाँ। तो फिर तुम, सर में दर्द है, मिग्रेन? फुरकान अब उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। नहीं, सालार ने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की, उसका फायदा भी नहीं था। उसने अपनी आंखों को मसला। तो फिर क्या हुआ है तुम्हें, आंखें सुर्ख हो रही हैं, मैं रात सोया नहीं, ड्राइव करता रहा हूं, सालार ने बड़े आम से अंदाज में कहा। तो अब सो जाते यहां कर फ्लैट पर। सुबह से क्या कर रहे हो? फुरकान ने कहा, कुछ भी नहीं। सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। तुम तो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाते हो, फिर नींद ना आना क्या माने रखता है? फुरकान को ताज्जुब हुआ। बस आज नहीं लेना चाहता था मैं, या ये समझ लो मैं सोना नहीं चाहता था। खाना खाया? नहीं, भूख नहीं लगी। 2 बज रहे हैं, फुरकान ने जैसे उसे जताया। मैं खाना भिजवाता हूँ, खा लो, थोड़ी देर सो जाओ, फिर रात को निकलते हैं आउटिंग के लिए। नहीं, खाना मत भिजवाना, मैं सोने जा रहा हूँ, शाम को उठूंगा तो बाहर जाकर कहीं खा लूंगा। सालार कहते हुए सोफे पर लेट गया और अपना बाजू आंखों पर रख लिया। फुरकान कुछ देर बैठा उसे देखता रहा और फिर उठकर बाहर चला गया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रिमशा ने सालार के कमरे में आते हुए कहा। उसने रिसेप्शन की तरफ जाते हुए सालार के कमरे की खिड़कियों के चंद खुले हुए ब्लाइंड्स में से उसे अंदर आते देखा था। कॉरिडोर में जाने के बजाय वो रुक गई। सालार टेबल पर अपनी कोहनियां टिकाए दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए था। रिमशा जानती थी कि उसे कभी कभार मिग्रेन का दर्द होता था। वो रिसेप्शन की तरफ जाने के बजाय उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। सालार उसे देखकर सीधा हो गया। अब वो टेबल पर खुली एक फाइल को देख रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रिमशा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने रिमशा को देखने की कोशिश नहीं की। रिमशा वापस जाने के बजाय आगे बढ़ाई। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, उसने सालार के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। तुम प्लीज इस फाइल को ले जाओ, इसे देख लो। मैं नहीं देख पा रहा, सालार ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय फाइल बंद करके टेबल पर उसकी तरफ खिसका दी। मैं देख लेती हूँ, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो घर चले जाओ, रिमशा ने तशवीश भरे अंदाज में कहा। हाँ, बेहतर है मैं घर चला जाऊं, उसने अपना ब्रीफकेस खोला और उसे खोलकर अपनी चीजें अंदर रखना शुरू कर दी। रिमशा बगौर उसका जायजा लेती रही। वो 11 बजे ऑफिस से वापस घर आ गया था। ये 4th दिन था जब वो मुसलसल उसी हालत में था। यकदम हर चीज में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। बैंक में अपनी जॉब, लम्स के लेक्चर्स, डॉक्टर सिप्त अली के साथ नशिस्त, फुरकान की कंपनी, गांव का स्कूल, मुस्तकबिल के मंसूबे और प्लानिंग, उसे कोई चीज़ भी अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी। वो जिस इम्कान के पीछे कई साल पहले सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गया था, वो इम्कान ख़त्म हो गया था। और उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि उसके ख़त्म होने से उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो मुसलसल अपने आप को इस हालत से बाहर लाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। वो नाकाम हो रहा था। महज ये तसव्वुर कि वो किसी और शख्स की बीवी बनकर किसी और के घर में रह रही होगी, सालार सिकंदर के लिए उतना ही जानलेवा था जितना माजी का यह अंदेशा कि वो गलत हाथों में चली ना गई हो। और उसी जहनी हालत में उसने उम्रे पर जाने का फैसला किया था। वो वाहिद जगह थी जो उसकी जिंदगी में अचानक आ जाने वाली बेमानवियत को ख़त्म कर सकती थी। वो अहराम बांधे खाने काबा के सहन में खड़ा था। खाने काबा में कोई नहीं था, दूर दूर तक किसी वजूद का निशान नहीं था। रात के पिछले पहर आसमान पर चांद और सितारों की रोशनी ने सहन के मार्बल से मुनक्किस होकर वहां की हर चीज को एक अजीब सी दूधिया रोशनी में नहला दिया था। चांद और सितारों के अलावा वहां कोई और रोशनी नहीं थी। खाने काबा के गिलाफ पर लिखी आयत से गिलाफ पर अजीब तरह से रोशन थे। हर तरफ गहरा सुकूत था और इस गहरे सुकूत को सिर्फ एक आवाज तोड़ रही थी, उसकी अपनी आवाज। वो मकाम मुल्तजम के पास खड़ा था। उसकी नजरें खाना काबा के दरवाजे पर थीं। वो सर उठाए बुलंद आवाज से कहने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ मेरा अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक हम्द व सना तेरे लिए हैं, नेमत तेरी है, बादशाही तेरी है, कोई तेरा शरीक नहीं। पूरी कुव्वत से गूंजती हुई उसकी आवाज खाने काबा के सुकूत को तोड़ रही थी। उसकी आवाज किला की वसतों तक जारी थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नंगे पांव नीम बरहना وہاں کھڑا اپنی آواز پہچان رہا تھا، لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ٹھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے، لا شریک لک۔ اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یک دم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی، آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک پڑ گئی تھی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت سحر زدہ، کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا، لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا، ان الحمد والنعمت۔ اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی، لک والملک۔ اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا، لا شریک لک۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا، لبیک لا شریک لک۔ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی، لبیک ان الحمد والنعمت۔ آواز دائیں طرف سے نہیں تھی بلکہ بائیں طرف تھی، کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر، لک والملک لا شریک لک۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی میں وہی نسوانی آواز سنی، اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کی آنکھ کھل گئی، وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا، وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی، اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا، 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا، کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے، دونوں ہاتھوں سے چہروں کو ڈھانپ لیا، آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا یہ حرم شریف تھا، یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس پر رقت طاری ہو رہی تھی، وہ سر جھکائے وہاں بہت دیر روتا رہا، پھر اسے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا، وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا، وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا، عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے، वो अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। वुजू के बाद उसने उमरे के लिए एहराम बांधा। काबे का तवाफ करते हुए उसे इस बार इत्तफाकन उसे मकाम मुल्तजिम के पास जगह मिल गई, वहां जहां उसने अपने आप को ख्वाब में खड़े देखा था। अपने हाथ ऊपर उठाते हुए उसने दुआ करना शुरू की। यहां खड़े होकर तो उससे अंबिया दुआ करते थे, उनकी दुआओं और मेरी दुआओं में बहुत फर्क है। वो गिड़गिड़ा रहा था। मैं नबी होता तो नबियों जैसी दुआ करता, मगर मैं तो आम बशर हूं और गुनाहगार बशर। मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरजुएं सब आम हैं। यहां खड़े होकर कभी कोई किसी औरत के लिए रोया नहीं होगा। मेरी जिल्लत और मेरी पस्ती की इससे ज्यादा इंतहा क्या होगी कि मैं यहां खड़ा, हरम पाक में खड़ा एक औरत के लिए गिड़गिड़ा रहा हूं। मगर मुझे न अपने दिल पर इख्तियार है न अपने आंसुओं पर। यह मैं नहीं था जिसने उस औरत को अपने दिल में जगह दी, यह तूने किया। क्यों मेरे दिल में उस औरत के लिए इतनी मोहब्बत डाल दी कि मैं तेरे सामने खड़ा होकर भी उसे याद कर रहा हूं? क्यों मुझे इस कदर बेबस कर दिया कि मुझे अपने वजूद पर भी कोई इख्तियार नहीं रहा? मैं वो बशर हूं जिसे तूने उन तमाम कमजोरियों के साथ बनाया। मैं वो बशर हूं जिसे तेरे सिवा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। और वो औरत मेरी जिंदगी के हर रास्ते पर खड़ी है, मुझे कहीं जाने कहीं पहुंचने नहीं दे रही। या तो उसकी मोहब्बत को इस तरह मेरे दिल से निकाल दे कि मुझे कभी उसका ख्याल तक ना आए, या फिर उसे मुझे दे दे। वो नहीं मिलेगी तो मैं सारी जिंदगी उसी के लिए रोता रहूंगा। वो मिल जाएगी तो तेरे अलावा किसी के लिए आंसू नहीं बहा सकूंगा। मेरे आंसुओं को खालिस होने दे। मैं यहां खड़ा तुझसे पाक औरतों में से एक को मांगता हूं। मैं इमामा हाशिम को मांगता हूं। मैं अपनी नस्ल के लिए उस औरत को मांगता हूं जिसने आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं किया, जिसने उनके लिए अपनी जिंदगी के तमाम आसाइशात को छोड़ दिया। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेकी की है तो मुझे उसके एवज इमामा हाशिम दे दे। तो चाहे तो यह अब भी हो सकता है, अब भी मुमकिन है, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, मेरी जिंदगी आसान कर दे। 8 साल से मैं जिस तकलीफ में हूं मुझे उससे रिहाई दे दे। सालार सिकंदर पर एक बार फिर रहम कर, वही जो तेरी सिफात में अफजल तरीन है। वो सर झुकाए वहां बिलक रहा था, उसी जगह पर जहां उसने खुद को ख्वाब में देखा था, मगर इस बार उसकी पुश्त पर इमामा हाशिम नहीं थी। बहुत देर तक गिड़गिड़ाने के बाद वो वहां से हट गया था। आसमान पर सितारों की रोशनी अब भी मध्यम थी। खाने काबा रोशनियों से अब भी बकाए नूर बना हुआ था। लोगों का हुजूम रात के इस पहर भी उसी तरह था। ख्वाब की तरह खाने काबा का दरवाजा भी नहीं खुला था। उसके बावजूद वहां से हटते हुए सालार सिकंदर को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो उस कैफियत से बाहर आ रहा था जिसमें वो पिछले एक माह से था। एक अजीब सा करार था जो उस दुआ के बाद उसे मिला था। वो उसी करार और तमानियत को लिए हुए एक हफ्ते बाद पाकिस्तान लौट आया था। मैं अगले साल PhD के लिए अमेरिका जा रहा हूं। फुरकान ने बेख्तियार चौंक कर सालार को देखा। क्या मतलब? सालार हैरानी से मुस्कुराया। क्या मतलब का क्या मतलब? मैं PhD करना चाहता हूं। यूं अचानक? अचानक तो नहीं, PhD तो करनी थी मुझे, बेहतर है अभी कर लूं, सालार इत्मीनान से बता रहा था। वो दोनों फुरकान के गांव से वापस आ रहे थे। फुरकान ड्राइव कर रहा था जबकि सालार ने अचानक उसे PhD के इरादे के बारे में बताया। मैंने बैंक को बता दिया है, मैंने रिजाइन करने का सोचा है, लेकिन वो मुझे छुट्टी देना चाह रहे थे। अभी मैंने सोचा नहीं कि उनके ऑफर कबूल कर लूं या रिजाइन कर दूं। तुम सारी प्लानिंग किए बैठे हो? हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई अगले साल PhD के लिए जा रहा हूं। चंद माह पहले तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादे का क्या है, वो तो एक दिन में बन जाता है। सालार ने कंधे झटकते हुए खिड़की के शीशे से बाहर नजर आने वाले खेतों को देखते हुए कहा। میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کرا لوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام بآسانی کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا انفراسٹرکچر بھی کچھ بہتر ہو جائے گا، بورڈ آف گورنرس ہے، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو، میں نے پاپا سے بات بھی کی ہے، اور وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر میں مکمل طور پر اسے قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا، پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب تھرمس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے، میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔ سالار نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف ہاتھ منہ دھویا تھا، شیو نہیں کی تھی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہن لیا۔ اس نے کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سعیدہ اماں کو وہاں کھڑا پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی عینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی، سالار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بھلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا داڑھی رکھنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی، وہ ان کی بات پر محسوس ہوا۔ دیر سے کیوں اٹھے؟ بیٹا دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے، پھر سیر کو چلا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روز صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگی۔ بہت اچھی بات ہے، اسی لیے تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، صبح 6-7 بجے ناشتہ کر لیتی ہوں، 11:30 بجے تو میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں ابھی تو مجھے بھوک نہیں، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے، مصروف تو وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ تم نے گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ वो टोस्टर से स्लाइस निकालते हुए उनकी बात पर मुस्कुराए। अब यही देखो, ये तुम्हारे करने के काम तो नहीं है, वो उसे चाय की ट्रे लाते देखकर खफगी से बोली। मैं तो कहती हूं ये काम मर्द के करने वाले ही नहीं, वो कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए मेज पर बर्तन रखने लगा। अब देखो, बीवी होती तो ये काम बीवी कर रही होती, मर्द अच्छा नहीं लगता ऐसे काम करते हुए। आप ठीक कहती हैं अम्मा जी, मगर अब मजबूरी है, अब बीवी नहीं है तो क्या किया जा सकता है। सालार ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उन्हें उसकी बात पर झटका लगा। ये क्या बात हुई, क्या किया जा सकता है? अरे बच्चे, दुनिया लड़कियों से भरी हुई है, तुम्हारे तो अपने माँ बाप भी हैं, उनसे कहो तुम्हारा रिश्ता तय करें, या तुम चाहो तो मैं कोशिश करूं। सालार को एकदम सूरत हाल की संगीनी का एहसास होने लगा। नहीं नहीं अम्मा जी, आप चाय पिए, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी से। जहां तक घर के कामों का ताल्लुक है तो वो तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। लो अब तुम कहां से कहां पहुंच गए, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूं। वो कुछ गड़बड़ा गई। आप ये बिस्किट लें और केक भी, सालार ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं आई हूं वो तो भूल ही गई। उन्हें अचानक याद आया, अपने हाथ में पकड़ा बड़ा सा बैग उन्होंने खोलकर अंदर कुछ तलाश करना शुरू कर दिया। तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है, सालार को चाय पीते बेइख्तियार अच्छू लगा। मेरी बहन की? अम्मा जी, मेरी बहन की शादी तो 5 साल पहले हो गई थी, उसने कुछ हक्का बक्का होते हुए बताया। वो इतनी देर में अपने बैग से एक कार्ड बरामद कर चुकी थी। अरे मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूं, आमना की, तुम्हारी बहन हुई ना। उन्होंने उसके जुमले पर बड़े अफसोस के आलम में देखते हुए कार्ड थमाया। सालार को बेख्तियार हंसी आई। कल तक वो उसे उसकी बीवी बनाने की कोशिश में लगी हुई थी और अब एकदम बहन बना दिया। मगर उसके बावजूद सालार को बेतहाशा इत्मीनान महसूस हुआ। कम अज कम अब उसे उनसे या उनकी बेटी से कोई खतरा नहीं था। बहुत मसरूर सा होकर उसने कार्ड पकड़ लिया। बहुत मुबारक हो, कब हो रही है शादी? उसने कार्ड खोलते हुए कहा। अगले हफ्ते। चलें अम्मा जी, आपकी फिक्र तो खत्म हो गई। सालार ने मेरी के बजाय आपकी का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो गया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, फिर मैं भी अपने बेटों के पास इंग्लैंड चली जाऊंगी। सालार ने कार्ड पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाई। ये कार्ड तुम्हें देने खास तौर पर आई हूं, इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम्हें शादी पर आना है, भाई बनकर रुख्सत करना बहन को। सालार ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए चाय का कप लिया। आप फिक्र ना करें, मैं जरूर आऊंगा। वो कप नीचे रखकर सलाइस पर मक्खन लगाने लगा। ये फुरकान का कार्ड भी ले आई हूं मैं, उसको भी देने जाना है। उन्हें अब फुरकान की याद सताने लगी। फुरकान को तो आज भाभी के साथ अपने ससुराल जाना था, अब तक तो निकल चुका होगा, आप मुझे दे दें, मैं उसे दे दूंगा, सालार ने कहा। तुम अगर भूल गए तो? वो मुतमईन नहीं हुई। मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा मैं फोन पर उससे आपकी बात करा देता हूँ। वो एकदम खुश हो गई। हाँ ये ठीक है, तुम फोन पर उनसे मेरी बात करवा दो। सालार उठकर फोन उसी मेज पर ले आया। फुरकान का मोबाइल नंबर डायल करके उसने स्पीकर ऑन कर दिया और खुद नाश्ता करने लगा। फुरकान, सईदा अम्मा आई हुई है मेरे पास, फुरकान के कॉल रिसीव करने पर उसने बताया। इनसे बात करो। वो खामोश हो गया। अब फुरकान और सईदा अम्मा के दरमियान बात हो रही थी। 10 मिनट बाद जब ये गुफ्तगू खत्म हुई तो सालार नाश्ता कर चुका था। बर्तन किचन में रखते हुए उसे ख्याल आया, आई किसके साथ थी आप? वो बाहर निकल आया। अपने बेटे के साथ, सईदा अम्मा ने इत्मीनान से कहा। अच्छा बेटा आ गया आपका, छोटा वाला या बड़ा वाला? सालार ने दिलचस्पी ली। मैं साथ वालों के राशिद की बात कर रही हूं, सईदा अम्मा ने बेइख्तियार बुना माना। सालार ने गहरा सांस लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि सईदा अम्मा के लिए हर लड़का अपना बेटा और हर लड़की अपनी बेटी थी, वो बड़े आराम से रिश्ते घड़ लेती थी। तो वो कहाँ है? सालार ने पूछा। वो चला गया, मोटरसाइकिल पर आई हूं उसके साथ, आंधी की रफ्तार से चलाई है उसने, 9 बजे बैठी हूं, पूरे 10:30 बजे इधर पहुंचा दिया उसने, मेरी एक नहीं सुनी उसने सारा रास्ता, बार बार यही कहता रहा आहिस्ता चला रहा हूं। यहां उतारते वक्त कहने लगा, आपके साथ मोटरसाइकिल पर मेरा आखिरी सफर था, दोबारा कहीं ले जाना हो तो पैदल लेकर जाऊंगा आपको, सालार को हंसी आई। आधे घंटे में तय होने वाले रास्ते को डेढ़ घंटे में तय करने वाले की झुंझलाहट का वो अंदाजा कर सकता था। बूढ़ों के साथ वक्त गुजारना खासा मुश्किल काम था। ये वो सईदा अम्मा के साथ होने वाली पहली मुलाकात में ही जान गया था। तो वापस कैसे जाएंगी? राशिद लेने आएगा आपको? हाँ, उसने कहा तो है कि मैच खत्म होने के बाद आपको ले जाऊंगा। अब देखो कब आता है। वो उसे एक बार फिर अपनी बेटी और उसके होने वाले ससुराल के बारे में इतला पहुंचाने लगी। वो मुस्कुराते हुए बड़ी फर्माबरदारी से सुनता रहा। इस किस्म की मालूमात में उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मगर सईदा अम्मा अब उसके साथ बैंकिंग के बारे में तो गुफ्तगू नहीं कर सकती थी। उनकी बातें रत्ती भर भी उसकी समझ नहीं आ रही थी, मगर वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे वो हर बात समझ रहा है।